कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम बाइबल के पुराना नियम में पाए जाने वाली पुस्तक पहला राजा का बाइबल अध्ययन कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आपको इससे आत्मिक लाभ मिल रहा होगा। परमेश्वर की आशीषों को इन अध्ययनों से पाते जाइए और बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम सत्य वचन में।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं अपने उन तमाम श्रोता मित्रों का स्वागत करता हूँ जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूँ कि हम इन दिनों पहले राजाओं की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि दाऊद की इच्छा अंततः पूरी हुई और वाचा का संदूक एक स्थायी स्थान में लाया गया और उसके साथ ही शकीना वहां उपस्थित हुई। और आज हम देखेंगे सुलेमान से प्रार्थना के साथ मंदिर का समर्पण। सुलेमान ने प्रार्थना के साथ मंदिर का समर्पण किया। तो आइए आप मेरे साथ निकालिए पहले राजाओं की पुस्तक 8 अध्याय उसके 47 और 48 पद। पहले राजाओं की पुस्तक 8 अध्याय उसके 47 और 48 पद लिखा है, तो यदि वे बंधुआई के देश में सोच विचार करें और फिर कर अपने बंधुआ करने वालों के देश में तुझ से गिड़गिड़ा कर कहें कि हमने पाप किया और कुटिलता और दुष्टता की है, और यदि वे अपने उन शत्रुओं के देश में जो उन्हें बंधुआ करके ले गए हों अपने संपूर्ण मन और संपूर्ण प्राण से तेरी ओर फिरें और अपने इस देश की ओर जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम का बनाया है, तुझसे प्रार्थना करता हूँ। मेरे मित्रों, यदि मंदिर को नष्ट कर दिया जाए और वे परदेश में दास हो जाएं, तब उन्हें ऐसा ही करना होगा। बेबीलोन में रहते हुए दानियल ने ऐसा ही किया था। वह यरूशलेम की ओर खुलती हुई खिड़की की ओर मुंह करके मंदिर के समक्ष अपने और अपने लोगों के पापों का अंगीकार करके प्रार्थना करता था। हम पहले राजाओं की पुस्तक 8 अध्याय उसके 49 और 50 पद में पढ़ते हैं, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनना और उनका न्याय करना, और जो पाप तेरी प्रजा के लोग तेरे विरोध करेंगे और जितने अपराध वे तेरे विरोध करेंगे सबको क्षमा करके उनके बंधुआ करने वालों के मन में ऐसी दया उपजाना कि वे उन पर दया करें। मेरे मित्रों, जैसा हम देखेंगे कि परमेश्वर इस प्रार्थना का उत्तर देता है, आइए आगे पढ़ें पहले राजाओं की पुस्तक 8 अध्याय उसके 54 पद में। जब सुलेमान यहोवा से यह सब प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ कर चुका, तब वह जो घुटने टेके और आकाश की ओर हाथ फैलाए हुए था सो यहोवा की वेदी के सामने से उठा। मेरे मित्रों, प्रार्थना में उचित अंग विन्यास क्या है? इस विषय में सदा ही प्रश्न बना रहता है। क्या आपके खड़े रहकर, घुटने टेक कर या हाथ पांव पर झुक कर या दंडवत करके प्रार्थना करना चाहिए? सुलेमान ने घुटने टेक कर प्रार्थना की थी। यद्यपि प्रार्थना के लिए विशेष अंग विन्यास की आवश्यकता नहीं है, आप किसी भी अंग विन्यास में प्रार्थना कर सकते हैं। यहाँ घुटने टेकना दर्शाया गया है। मेरे विचार में विक्टर ह्यूगो ने कहा था कि अंग विन्यास से निर्विक्ष आत्मा अनेक बार घुटने टेकती है, मन की दशा देखी जाती है, यही महत्वपूर्ण है। मित्रों, हम आगे पढ़ते हैं पहले राजाओं की पुस्तक 8 अध्याय उसके 63 से 65 पद में, जहां पर लिखा हुआ है, और जो पशु सुलेमान ने मेलबलि में यहोवा को चढ़ाए सो 22,000 बैल और 120,000 भेड़े थी। इस रीति राजा ने सब इसराइलियों समेत यहोवा के भवन की प्रतिष्ठा की। उस दिन राजा ने यहोवा के भवन के सामने वाले आंगन के मध्य भी एक स्थान पवित्र किया और होम बलि और अन्न बलि और मेल बलि की चर्बी वहीं चढ़ाई। क्योंकि जो पीतल की वेदी यहोवा के सामने थी वह उनके लिए छोटी थी, और सुलेमान ने और उसके संग समस्त इसराइल की एक बड़ी सभा ने जो हमात की घाटी से लेकर मिस्र के नाले तक के सब देशों से इकट्ठा हुई थी, दो सप्ताह तक अर्थात 14 दिन तक हमारे परमेश्वर यहोवा के सामने पर्व को माना। फिर 8वें दिन उसने प्रजा के लोगों को विदा किया। मित्रों, यहाँ पर एक बात दिखती है कि मंदिर की वेदियां इस अध्याय में व्यक्त सब पशु बलियों के लिए कम पड़ रही थी। इस समय बलि किए गए पशु संख्या में बहुत अधिक थे। मेरे विचार में ये वेदियां उत्तर में हमात की घाटी से लेकर दक्षिण में मिस्र के नाले तक बनाई गई थी। बलि करने के पश्चात पशु वेदी से उतार कर प्रजा में बांट दिए गए। यह एक महान उत्सव था। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम आगे देखते हैं पहले राजाओं की पुस्तक 8 अध्याय उसके 66 पद में, और वे राजा को धन्य धन्य कहकर उस सब भलाई के कारण जो यहोवा ने अपने दास यहूदा और अपनी प्रजा इसराइल से की थी आनंदित और मगन होकर अपने अपने डेरे को चले गए। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 8 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 9 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे और इसमें हम देखेंगे सुलेमान की ख्याति। परमेश्वर दूसरी बार सुलेमान को दर्शन देता है और उसे ढाड़स बंधाता है और सुलेमान के लिए दाऊद को आदर्श स्वरूप मानदंड स्वरूप रखता है। अध्याय 9 और 10 सुलेमान की महानता और उसके राज्य की समृद्धि का वर्णन करते हैं। तो आइए देखें सुलेमान को परमेश्वर का दूसरा दर्शन। पहले राजाओं की पुस्तक 9 अध्याय उसके 1-3 पद में हम पढ़ते हैं, जब सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका और जो कुछ उसने करना चाहा था उसे कर चुका, तब यहोवा ने जैसे गिबोन में उसको दर्शन दिया था वैसे ही दूसरी बार भी उसे दर्शन दिया, और यहोवा ने उससे कहा, जो प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ तूने मुझसे की है उसको मैंने सुना है। यह जो भवन तूने बनाया है उसमें मैंने अपना नाम सदा के लिए रखकर उसे पवित्र किया है, और मेरी आंखें और मेरा मन नित्य वहीं लगे रहेंगे। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, मैं तुझे यहाँ इस मंदिर में भेंट करूंगा। यह स्थान तेरे लिए और प्रजा के लिए वरन संसार के लिए होगा कि वे यहाँ आए। यह समागम स्थल होगा अर्थात मिलन का स्थान होगा, जहाँ परमेश्वर और मनुष्य एक दूसरे के साथ अपनी बातों को बांट सकेंगे। पहले राजाओं की पुस्तक 9 अध्याय के 4 पद में आगे लिखा है, और यदि तू अपने पिता दाऊद की नाई मन की खराई और सीधाई से अपने को मेरे सामने जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे, तो मैं तेरा राज्य इसराइल के ऊपर सदा के लिए स्थिर करूंगा। हमारे परमेश्वर ने सुलेमान को आदेश दिया, यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मन की खराई और सिधाई से अपने को मेरे सामने जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे, तो मैं तेरा राज्य इसराइल के ऊपर सदा के लिए स्थिर करूंगा। मित्रों, दाऊद एक मानवीय आदर्श था परंतु परमेश्वर के अनुसार नहीं। दाऊद में परमेश्वर के प्रति महान श्रद्धा थी। वह परमेश्वर से प्रेम रखता था परंतु उससे चूक हुई। उसने ठोकर खाई, वह लड़खड़ाया और गिरा, परंतु वह उठकर खड़ा हुआ और अंगीकार करके परमेश्वर के पास आ गया। वह परमेश्वर के साथ संगति रखने को लालायित था। अतः परमेश्वर ने सुलेमान से कहा कि वह सुलेमान से यही चाहता है, वह अपने पिता दाऊद के समान उसकी उपस्थिति में आचरण करे मन की सत्य निष्ठा के साथ में। मेरे प्रिय मित्रों, आज मन की खराई की अत्यधिक आवश्यकता है, क्योंकि मसीही आचरण में अत्यधिक स्वांग और बहानेबाजी है। कुछ समय पूर्व मुझे किसी कलीसिया में आराधना करने का और संदेश देने का अवसर मिला। वहां लगभग 500 से अधिक लोग थे। वहाँ एक नेता ने भी 2 शब्द कहे। सुनकर आप सोचते हैं कि वह महापवित्र मनुष्य है, परंतु वह वचन के मध्य ही उठकर चला गया। आप जानते हैं क्यों? वह सुनना नहीं चाहता था, उसे परमेश्वर के वचन में रुचि नहीं थी। आज ऐसा ही आडंबर सर्वस्व व्याप्त है। रविवार आराधनालयों में अनिष्ठा और आडंबर व्याप्त है। वहां संसार का एक व्यापारी आता है जो अपने आचरण के प्रति सतर्क नहीं है। वह अपने परिवार में भी अच्छा उदाहरण नहीं है, फिर भी वह बाइबल लेकर आराधना में आता है और परमेश्वर एवं उसकी इच्छा के विषय बातें करता है। वह धार्मिक अभिव्यक्तियों का व्यापक उपयोग करता है। वह किसको मूर्ख बनाने का प्रयास करना चाहता है? क्या वह सोचता है कि उसने परमेश्वर को मूर्ख बनाया है? मेरे मित्रों, हम परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। इस कारण हम उसे सब कुछ बता दें, क्योंकि उसे कुछ छिपा नहीं। दाऊद मन की खराई से परमेश्वर के सम्मुख आचरण करता है। उसने जब पाप किया तब उसने क्षमा मांगकर शोधन की याचना की। उसका विश्वास यद्यपि पल भर के लिए चूक गया, चूकने वाले विश्वास के नीचे एक अचूक विश्वास है। वह यद्यपि एक असिद्ध मनुष्य था, परमेश्वर ने उसे आदर्श राजा कहा। अपने पिता दाऊद के समान मन की खराई और सिधाई से अपने को मेरे सामने जानकर चलता रहे। हम पहले राजाओं की पुस्तक 9 अध्याय उसके 5 पद में पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने तेरे पिता दाऊद को वचन दिया था कि तेरे कुल में इसराइल की गद्दी पर विराजने वाले सदा बने रहेंगे। मेरे मित्रों, जब तक इसराइल में राजा रहा तब तक वह दाऊद के वंश से ही रहा, और आज भी दाऊद के वंश से ही इस जगत का राजदंड पकड़ने वाला छिदे हुए हाथ का राजा है। हम पहले राजाओं की पुस्तक 9 अध्याय उसके 6 और 7 पद में पढ़ते हैं, परंतु यदि तुम लोग व तुम्हारे वंश के लोग मेरे पीछे चलना छोड़ दें और मेरे उन आज्ञाओं और विधियों को जो मैंने तुमको दी है ना माने, और जानकर पराये देवताओं की उपासना करें और जाकर पराये देवताओं की उपासना करें और उन्हें दंडवत करने लगे, तो मैं इसराइल के इस देश में से जो मैंने उनको दिया है काट डालूंगा, और इस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है अपने दृष्टि से उतार दूंगा, और सब देशों के लोगों में इसराइल की उपमा दी जाएगी और उसका दृष्टांत चलेगा। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि आज निश्चय ही यहूदी संसार में उपमा और दृष्टांत बने हुए हैं। यह सच हुआ है। हम पढ़ते हैं पहले राजाओं की पुस्तक 9 अध्याय उसके 8 और 9 पद में, और यह भवन जो ऊंचे स्तर पर रहेगा तो जो कोई इसके पास होकर चलेगा वह चकित होगा और ताली बजाएगा, और वे पूछेंगे कि यहोवा ने इस देश और इस भवन के साथ क्यों ऐसा किया है। तब लोग कहेंगे कि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा को जो उनके पुरखाओं और मिस्र देश से निकाल लाया था तज कर पराये देवताओं को पकड़ लिया और उनको दंडवत की और उनकी उपासना की, इस कारण यहोवा ने यह सब विपत्ति उन पर डाल दी है। मित्रों, यह भी शब्द स अर्थात हूबहू पूर्ण हुआ है। यदि आज आप उस स्थान पर जाएं जहां मंदिर बना हुआ था तो आप देखेंगे कि वहां कुछ भी नहीं है। वहां ओमर का मस्जिद बना हुआ है। वह देश ऐसा क्यों है? वहां आज मस्जिद क्यों है? इसराइल ने परमेश्वर का त्याग किया, यही इसका उत्तर है। आइए अब हम आगे देखें सुलेमान की ख्याति। लिखा है कि हिराम और सुलेमान में मनमुटाव हो गया। पहले राजाओं की पुस्तक 9 अध्याय उसके 10 से 12 पद में लिखा हुआ है, सुलेमान को तो यहोवा के भवन और राजभवन दोनों के बनाने में 20 वर्ष लग गए। तब सुलेमान ने सोर के राजा हिराम को, जिसने उसके मनमाने देवदारों और सनोवर की लकड़ी और सोना दिया था, गलील देश के 20 नगर दिए। जब हिराम ने सोर से जाकर उन नगरों को देखा जो सुलेमान ने उसको दिए थे, तब वे उसको अच्छे न लगे। जब राजा हिराम ने गलील के वे 20 नगर देखे तो उसे संतोष नहीं हुआ। उसे लगा कि उसने सुलेमान के लिए जो कुछ भी किया उसके बदले में उसे पूरा भुगतान नहीं किया गया है। इस भ्रम के कारण उन दोनों के बीच में मनमिटाव अर्थात फूट आ गया। हम पहले राजाओं की पुस्तक 9 अध्याय उसके 13 और 14 पद में हम पढ़ते हैं, तब उसने कहा, हे मेरे भाई, ये नगर क्या तूने मुझे दिए हैं? और उसने उनका नाम काबुल देश रखा, और यही नाम आज के दिन तक पड़ा है। फिर हिराम ने राजा के पास 60 की कार सोना भेज दिया। मेरे मित्रों, ये नगर उसे सोना भेजने के बदले में मिले थे। लकड़ी, पत्थर और मजदूर के बदले उसे मक्का, दाख मधु और तेल दिया गया था। आगे हम पढ़ते हैं पहले राजाओं की पुस्तक 9 अध्याय उसके 17 से 19 पद में, लिखा हुआ है, सो सुलेमान ने गेजेर और नीचे वाले बथोरेन, बालात और तामार को जो जंगल में है दृढ़ किया, ये तो देश में है। फिर सुलेमान के जितने भंडार के नगर थे और उसके रथों और सवारों के नगर, उनको वरन जो कुछ सुलेमान ने यरूशलेम, लबानोन और अपने राज्य के सब देशों में बनाना चाहा, उन सब को उसने दृढ़ किया। मित्रों, इन पदों में सुलेमान के राज्य का विस्तार और विकास परियोजनाओं का उल्लेख है। हम आगे पढ़ते हैं पहले राजाओं की पुस्तक 9 अध्याय उसके 26 से 28 पद में लिखा हुआ है, फिर राजा सुलेमान ने एस्योन गेबेर में जो एदोम देश में लाल समुद्र की तीर एलोत के पास है जहाज बनाए, और जहाजों में हीराम ने अपने अधिकार के मल्लाहों को जो समुद्र से जानकारी रखते थे सुलेमान के सेवकों के संग भेज दिया। उन्होंने ओपोर को जाकर वहां से 420 की कार सोना राजा सुलेमान को लाकर दिया। मेरे मित्रों, सुलेमान ने उस युग के स्वर्ण बाजार को अपने नियंत्रण में कर लिया था। उसके पास जल सेना भी बड़ी मात्रा में थी। एस्योन गेबेर लाल सागर के पूर्वी छोर पर था। यह सुलेमान का बंदरगाह था जो इसराइल आइलाइट के निकट है। ऐसा माना जाता है कि उसकी नौसेना ओपीर तक यात्रा करती थी जो दक्षिण पश्चिम आराबा में था। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 9 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 10 से देखेंगे, जिसमें हम पाते हैं शीबा की रानी का आगमन। शीबा की रानी के आगमन से प्रकट है कि सुलेमान परमेश्वर की गवाही देने में उस युग के संपूर्ण संसार में सफल हुआ और सुलेमान की ख्याति संपूर्ण विश्व में फैल गई थी, और प्रतीत होता है कि असंख्य जन जीवित सच्चे परमेश्वर की उपासना के लिए यरूशलेम आने लगे थे। मित्रों, आज के युग में कलीसिया को पृथ्वी के छोर तक जाने का आदेश है। इसराइल को यह आदेश नहीं दिया गया था कि संसार में जाए, क्योंकि इसराइल परमेश्वर के प्रति सच्चा था, इसलिए वह संसार में गवाह हुआ और संसार आराधना के लिए यरूशलेम में आते थे। मित्रों, अध्याय 10 में सुलेमान के महान प्रभाव का भी हम उदाहरण पाते हैं। शीबा की रानी के आगमन से परमेश्वर के प्रतिनिधि सुलेमान के राज्य का प्रभाव प्रकट होता है जो संसार के राष्ट्रों पर था। तो आइए हम आगे बढ़ें और देखें पहले राजा की पुस्तक 10 अध्याय उसका 1 पद लिखा हुआ है, जब शीबा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय सुलेमान की कृति सुनी, तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को चल पड़ी। मित्रों, ध्यान दीजिए कि शीबा की रानी के आगमन का कारण था कि उसने सुना था कि वहां एक मंदिर है जिसमें मनुष्य परमेश्वर के निकट आ सकता है। वह इसके बारे में जानना चाहती थी। उसने सुलेमान की बुद्धि के बारे में भी सुना था, अतः वह जटिल समस्याओं को लेकर उसे परखने के लिए आई थी। हम पहले राजाओं की पुस्तक 10 अध्याय उसके 2-5 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, वह तो बहुत भारी दल और मसालों और बहुत सोने और मणि से लदे ऊंट के साथ लिए हुए यरूशलेम को आई और सुलेमान के पास पहुंचकर अपने मन की सब बातों के विषय में उससे बातें करने लगी। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कोई बात राजा की बुद्धि से ऐसी बाहर न रही कि वह उसको न बता सका। जब शीबा की रानी ने सुलेमान की सब बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा और उसके कर्मचारी किस रीति बैठते और उसके टहलुए किस रीति खड़े रहते और कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हैं और उसके पिलाने वाले कैसे हैं और वह कैसी चढ़ाई है जिससे वह यहोवा के भवन को जाया करता है, यह सब जब उसने देखा तब वह चकित हो गई। और वह कैसी चढ़ाई है जिससे वह यहोवा के भवन को जाया करता है। मित्रों, इसका अनुवाद वास्तव में ऐसा होना था, और उसकी होम बलि जिससे वह यहोवा के भवन को जाया करता था। उसने देखा कि सुलेमान होम बलि के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख आता था और यह बलि प्रभु यीशु मसीह के बारे में और उसकी प्रतिस्थापन मृत्यु के बारे में अन्य सबसे अधिक परिपूर्ण व्याख्या करती है। हम इब्रानियों के पत्र 9 अध्याय उसके 32 पद में पाते हैं, लिखा हुआ है, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। जी हाँ, होम बलि शीबा की रानी के लिए एक गवाही थी। वह सुलेमान की बुद्धि और उसकी निर्माण परियोजनाओं से भी बहुत प्रभावित हुई। राजमहल, मंदिर और अन्य भवन, समृद्धि, सुख सुविधा और सांसारिक आशीषें सर्वत्र व्याप्त थी। समय के चक्र में बहुत कम समय में परमेश्वर की प्रजा उसकी सच्ची एवं निष्ठावान साक्षी रही। मेरे मित्रों, रानी ने जो कुछ देखा और सुना उसकी गवाही यही है। हम पहले राजा की पुस्तक 10 अध्याय उसके 6 और 7 पद में पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, तब उसने राजा से कहा, तेरे कामों और बुद्धिमानी की जो कृति मैंने अपने देश में सुनी थी वह सच ही है, परंतु जब तक मैंने आप ही आकर अपनी आंखों से यह न देखा तब तक मैंने उन बातों की प्रतीति न की, परंतु इसका आधा भी मुझे न बताया गया था। तेरी बुद्धिमानी और कल्याण उस कृति से भी बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। मेरे मित्रों, उसे जो कहा गया था उस पर उसने पूरा विश्वास ही नहीं किया था, परंतु उसने आकर देखा कि उसने जो कुछ सुना था वह तो वास्तविकता का आधा ही भाग था। आज प्रभु यीशु के बारे में भी जो कुछ कहा जा रहा है वह वास्तव में यथार्थ का आधा ही भाग है। मेरे मित्रों, मुझे और आपको इसे पूर्ण रूप से बताने की आवश्यकता है। पहले राजाओं की पुस्तक 10 अध्याय उसके 8 और 9 पद में हम पढ़ते हैं, धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे ये सेवक जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे इसराइल की राजगद्दी पर विराजमान किया। यहोवा इसराइल से सदा प्रेम रखता है, इस कारण उसने तुझे न्याय और धर्म करने को राजा बना दिया है। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यह उसकी गवाही है और मेरे विचार में इससे यह प्रकट है कि वह जीवित और सच्चे परमेश्वर को जान गई थी। हम पहले राजाओं की पुस्तक 10 अध्याय के 10 पद में पढ़ते हैं, और उसने राजा को 120 की कार सोना, बहुत सा सुगंध द्रव्य और मणि दिया। जितना सुगंध द्रव्य शीबा की रानी ने राजा सुलेमान को दिया उतना फिर कभी नहीं आया। जी हाँ, उसने सुलेमान को बहुत धन दिया। हम आगे पढ़ते हैं पहले राजाओं की पुस्तक 10 अध्याय उसके 11 और 12 पद में, फिर हीराम के जहाज भी जो ओपीर से सोना लाते थे वह बहुत सी चंदन की लकड़ी और मणि भी लाए, और राजा ने चंदन की लकड़ी से यहोवा के भवन और राजभवन के लिए जंगले और गवयों के लिए वीणा और सारंगियां बनवाई। ऐसी चंदन की लकड़ी आज तक फिर नहीं आई और न दिखाई पड़ी है। हीराम सोर का राजा था। वे फिनिक वासी थे जो समुद्री यात्री थे। यहाँ हम देखते हैं कि सुलेमान के निर्माण कार्य प्रगति पर है। उसने परमेश्वर के भवन और राजा के महल के लिए खंभे बनवाए तथा गवयों के लिए वीणा और सारंगियां भी बनवाई। हम पहले राजाओं की पुस्तक 10 अध्याय के 13 पद में पढ़ते हैं, और शीबा की रानी ने जो कुछ चाहा वही राजा सुलेमान ने उसकी इच्छा के अनुसार उसको दिया। फिर राजा सुलेमान ने उसको अपनी उदारता से बहुत कुछ दिया, तब वह अपने जनों समेत अपने देश को लौट गई। शीबा की रानी का उदाहरण तो उन अनेक लोगों में से एक है जो इस युग में परमेश्वर यहोवा को जानने पाए। इसी प्रकार प्रेरितों के काम की पुस्तक भी प्रभु यीशु को ग्रहण करने वालों के कुछ एक की ही नाम देती है, जैसे मिस्र का भंडारी, तर्शुस का शाउल और कुर्नेलियुस। तथापि हम जानते हैं कि उस समय हजारों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था। इसी यरूशलेम के मंदिर के द्वारा और सुलेमान के युग के मनुष्यों के द्वारा हजारों मनुष्य परमेश्वर यहोवा को जान पाए। अब सुलेमान के पास आने वाले सोने के लिए भी यहाँ पर कुछ लिखा है। आइए हम पढ़ें पहले राजाओं के पुस्तक 10 अध्याय उसके 14 से 16 पद में, जो सोना प्रति वर्ष सुलेमान के पास पहुंचा करता था उसका तौल 666 की कार था। इससे अधिक सौदागरों से और व्यापारियों के लेन देन से और दोगली जातियों के सब राजाओं और अपने देश के गवर्नरों से भी बहुत कुछ मिलता था, और राजा सुलेमान ने सोना गढ़वाकर 200 बड़ी बड़ी ढालें बनवाई। एक एक ढाल में 600 शेकेल सोना लगा था। मेरे मित्रों, 666 की कार सोना मेरी समझ से परे है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि संपूर्ण स्वर्ण बाजार सुलेमान के हाथ में था, राज्य अपनी चरम सीमा पर था। और सच तो यह है कि दाऊद इसराइल को इन ऊंचाइयों पर ले आया था, परंतु सुलेमान शांति, बहुतायत और समृद्धि का आनंद ले रहा था। हम पहले राजाओं की पुस्तक 10 अध्याय उसके 22 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि समुद्र पर हीराम के जहाजों के साथ राजा भी तर्शीश के जहाज रखता था, और तीन तीन वर्ष पर तर्शीश के जहाज सोना, चांदी, हाथी दांत, बंदर और मयूर को ले आते थे। मेरे मित्रों, यह सब भोग विलास की वस्तुएं थी। बंदर मनोरंजन के लिए सुलेमान के चिड़ियाघर में रखे जाते थे। मोर सुंदरता के लिए, सोना चांदी और हाथी दांत साज सज्जा के लिए। उसे संसार में गवाह बनने के लिए बुलाया गया था। संसार उसके द्वार पर आ रहा था और वह क्या कर रहा था? वह अपना समय और शक्ति को अपनी मौज मस्ती में बिता रहा था, अर्थात वह तरंग पूर्ति के लिए बंदरों और मोर को ला रहा था। मेरे मित्रों, यह सुलेमान के राज्य का महत्वहीन और त्रासदीपूर्ण लक्षण था। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने बहुत सारी जानकारीपूर्ण बातों को सीखा और जाना है, और इस बात को आपने जान लिया है कि परमेश्वर अपने लोगों को किस रीति से आशीष देता है। आज मुझे और आपको भी सीखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर के उन महत्वपूर्ण बातों के लिए मुझे और आपको भी गवाही देना है, और सिर्फ आधा नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह के बारे में पूर्ण रीति से लोगों को जानकारी देनी है। क्या आज आप ऐसा करेंगे? जी हाँ, आज प्रभु से मांगे, वह आपको सामर्थ देंगे। पिता परमेश्वर, आज के इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दें और आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
जीवन की राह पर यीशु का नाम ले।